बेसिकली अभी वैष्णव सदाचार ये दयालु बाबा उन्होंने बताया कि उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। इसे प्रभुपाद कह रहे थे कि इस्कॉन जो संस्था है उसको खतरा बाहर से ज़्यादा नहीं है लेकिन अंदर से, तो वो अलग टॉपिक में आ जाता है। लेकिन यहाँ वो बता रहे, प्रभुपाद ये बता रहे थे कि हमारा, या एक एग्जांपल देते हैं, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जैसे बड़े आचार्य हुए हैं, तो जब चैतन्य महाप्रभु ने उनको भेजा था वृंदावन के लिए, तो वृंदावन भेजने के बाद उनको चार चीज़ों के बारे में उपदेश दिया था कि आपके मिशन है चार चीज़ करना। पहला था आप वृंदावन जाइए और वहाँ पर जो तीर्थ क्षेत्र है भगवान की लीला के स्थल उनको खोजिए। दूसरा वहाँ पर मंदिर निर्माण कीजिए जिससे कि पूजा होगी। उसके बाद अपने व्यवहार सब शास्त्रों को निचोड़ करके शास्त्र लिखिए। तीसरा था, ये तीन हो गए। यानी हमको शास्त्र जानना है, इतने सारे लाखों श्लोक हैं उनको तो इतना समझना मुश्किल है, लेकिन उसका निचोड़ जैसे उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, ये सब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की देन है जिससे हमें उतना बढ़ गया हो जाता है। दूसरा, उससे पहले जंगल था वृंदावन, किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी सब लीला स्थली ढूंढी है, राधा गोविंद राधा मदन मोहन ने मंदिर बनाया है। और चौथा था कि आप अपने जीवन से दिखाइए कि वैष्णव, स्पेसिफिकली जो रिनाउंस ऑर्डर वैराग्य का जीवन जीता है वो वैष्णव कैसा है, ये चौथा था। यानी भी वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए चार बताए तो चारों में ये कहता है कि वैष्णव के जीवन से, और वही सनातन गोस्वामी जब हरिदास ठाकुर से मिलते हैं तो उन दोनों में चर्चा होती है। तो सनातन गोस्वामी, वो क्या हुआ कि सनातन गोस्वामी जब जगन्नाथपुरी गए तो उनके शरीर के ऊपर पूरा ये हो जाएगा, फोड़े फोड़े आ गए थे, सब बाहर निकल रहा था। बस चैतन्य महाप्रभु अभी हर रोज आलिंगन करते थे, तो उसे बहुत बुरा लगता था कि ऐसे क्यों हो रहा है, मेरे कारण चैतन्य महाप्रभु के पूरे शरीर के ऊपर ये सब पस लग रहा है। तो एक बार उन्होंने जगदानंद पंडित से कहा कि देखिए मेरे को लग रहा है कि मेरे कारण बहुत ये हो रहा है। तो जगदानंद पंडित, उन्होंने कहा हाँ आप बहुत दिन रहली है अभी यहाँ पे जगन्नाथपुरी, वृंदावन जाइए, आपके लिए चैतन्य महाप्रभु वृंदावन बोला गया। तो उस समय ये हरिदास, तब चैतन्य महाप्रभु को बता, चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हुए, जगह कल का बच्चा ये क्या सोच रहा है अपने आप को कि आपको पाठ दे रहा है, उस तरह उस समय बताया। तो सनातन गोस्वामी उनको, उन्होंने कहा उनको ऐसा लगा कि देखिए मेरे को तो कभी डांट नहीं पड़ी चैतन्य महाप्रभु की, लेकिन जगदानंद पंडित को पड़ी है ना, वो स्नेह करते हैं इस तरह से। तो ये चैतन्य महा, ये हरिदास ठाकुर, उन्होंने देखा तो हरिदास ठाकुर के साथ ही ऐसे एक प्रसंग हुआ था। तो चैतन्य महाप्रभु उन्हें सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर को कहते हैं कि देखिए अलग अलग प्रकार के वैष्णव होते हैं, कुछ वैष्णव होते हैं जो प्रचार करते हैं लेकिन उनका आचार नहीं होता, और कुछ वैष्णव जिनका आचार होता है लेकिन प्रचार नहीं होता। लेकिन आप आचार्य हैं जिनका आचार है और प्रचार भी है, तो अर्थात ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, आचार और प्रचार, जिससे कि व्यक्ति के जीवन में या दूसरों के जीवन में परिवर्तन हो सकता है। प्रभुपाद ने अपने जीवन से दिखाया, जब वेस्ट में गए उनके शब्दों को समझने वाले इतने लोग भी नहीं थे ज़्यादा, तो से बोल रहे हैं, लेकिन सब जो वहाँ के हिप्पी लोग थे वो बोल रहे थे कि प्रभुपाद को देख के हमको लगता था कि ये जरूर हमारे लिए कुछ लेके आए, हमारे भले के लिए उस तरह से। तो प्रभुपाद का जीवन इस तरह से पारदर्शक भगवान के प्रति समर्पित था कि सब उनके प्रति आकर्षित हो गए और उन्हें अपना जीवन उनके प्रति निछावर कर दिया। इसीलिए जो वैष्णव होता है लोग उसको देखते हैं, फिर वो बोलता है, उन्हें उसका जीवन देखा जाता है किस तरह से व्यवहार करता है, तब उसके वचनों को लोग गंभीरता से लेंगे। अगर उसका जीवन वैसा नहीं रहा तो उसके वचनों को लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमें अगर संस्था में रहना है ऐसा, संस्था में हमें अगर रह के हमने जीवन क्यों समर्पित किया, हम भी कॉन्ग्रीगेशन में रहते हैं ना, उनकी शादी करके अब हैं, अच्छे लोग भी हैं कॉन्ग्रीगेशन में जो विवाह करके जीवन जी रहे, लेकिन एक है कि हम अपना पूरा समय भगवान को नहीं दे पा रहे, कुछ समय हमको अपने परिवार का ख्याल रखना पड़ता है, ये रखना पड़ता है। तो स्पेसिफिकली जब हम बोल रहे हैं कि एक साधु का जीवन हम जी रहे हैं, तो पूरी तरह से हमें ये सौभाग्य मिला कि जीवन समर्पित करना, तो फिर हमारा व्यवहार कैसा होना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उससे ही लोग कल का थीम भी वही है जो कल भागवतम है, उस तरह से उसमें किस तरह से ब्राह्मण का वर्ताव होता है, उस तरह से जैसे अगर हम देखेंगे कि पहले के लोग धर्म के नाम पे अपना जीवन दे देते पूरा, क्यों धर्म युद्ध होता है ना लड़ाई धर्म के नाम पे होती, ऐसा क्यों होता है, धर्म के नाम पे क्यों लोग अपना जान देते, ऐसा क्या है, क्यों लोग धर्म के पीछे, कोई बोलता है हिंदू है हिंदू धर्म के लिए जान दे दिया, मुस्लिम धर्म के लिए जान दे दिया, ऐसा क्यों, क्या जरूरी है टैग लगाना अपने को, छाप लगाना कि मैं हिंदू हूँ मुस्लिम हूँ, क्योंकि उस धर्म के नेता वैसे होते जो अपने जीवन से लोग, क्योंकि लोग भगवान को तो देख नहीं सकते हैं, लेकिन उस नेता को देख के यानी उस आचार्य को देख के वो पूरी तरह से आकर्षित हो जाते कि ये पूरी तरह भक्ति समर्पित है, तो ये जो बताएंगे मैं वो करने के लिए तैयार, इसलिए लोग देखेंगे हम ऐसे परिवर्तन हुआ। देखें आपने सुना है अंगुली माल एक डाकू था बुद्ध के समय, तो गौतम बुद्ध जब जंगल से जा रहे थे तो अंगुली माल के पूरे गले में माला थी, उंगलियों की लोगों को मार के उंगलियों को काटता था और उसकी माला बना हुआ था। तो जब यहाँ पे बुद्ध हैं वो गए तो वहाँ पे वो मारने के लिए आए, बहुत गाली गलौज किया लेकिन बिल्कुल डरे नहीं अंगुली माल से, ये देख के अंगुली माल आश्चर्यजनक हो गया और फिर उसने गौतम बुद्ध जी ने उनकी शरण आगे और परिवर्तित हो गया। यानी देखिए किस तरह से व्यवहार से व्यक्ति परिवर्तित हो गया, इसीलिए यहाँ पे ये वो स्टोरी आ गया है। लेकिन अगर हम देखेंगे भागवत में कोई ऐसा प्रसंग बताइए जिससे व्यक्ति के व्यवहार से लोगों का विश्वास हो जाता है, कोई ऐसा प्रसंग, हाँ व्यवहार से कोई लीडर आध्यात्मिक लीडर के गलत व्यवहार से बाकी लोगों का उनके ऊपर से विश्वास उठ जाता है और सब क्या बोलते हैं उसको समाज में अस्तव्यस्तता हो जाती है, ऐसा भी उदाहरण है भागवत में, आपने कुछ सुना होगा मॉर्निंग क्लासेस में, गुरु रवा का है, हाँ उनका व्यवहार गलत है लेकिन वो उस कॉन्टेक्स्ट में एग्जैक्टली बोला नहीं है, बिल्कुल सही हो व्यवहार उनका, एक राजा किस तरह से व्यवहार होना चाहिए उनका, पूरा एकदम स्त्री के पीछे भाग रहे हैं उस तरह से, आज तो राकेश को एकदम बता रहे थे कि वो तो बिना वस्त्र के भाग रहे थे उस तरह से, आपने पृथ्वी महाराज का देखा, पृथ्वी महाराज का सुना है, नहीं सुना है, ठीक है अच्छा, क्योंकि मैं उसको बताऊंगा नहीं ज़्यादा क्योंकि डिटेल में समय नहीं है अपने पास, पॉइंट्स रह जाएंगे, इसलिए जो सुना है उसके ऊपर ही मैं देखना चाहता हूँ। ये परीक्षित महाराज श्रृंगी का शाप सुना, श्रृंगी था एक ब्राह्मण, वो इनका पुत्र था समित ऋषि का, ब्राह्मण का बच्चा था लेकिन अपना शक्ति दिखाने के लिए उसने क्या किया, परीक्षित महाराज को शाप दिया कि आप 7 दिन में मर जाएंगे, और ऐसा कहा जाता है कि उस समय से ब्राह्मण वर्ग का पतन चालू हुआ और उसके कारण लोग ब्राह्मण वर्ग पर विश्वास नहीं रख रहे हैं, उसके कारण लोग धर्म पर विश्वास नहीं रख रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति जो उस स्तर पर उसने गलत व्यवहार किया। आज अभी न्यूज़पेपर में अगर ऐसे बहुत सारे स्कैंडल्स का बात आता है, बड़ा न्यूज हो जाता है, कुछ साल पहले एक इसके मठ के बड़े सन्यासी उनको मर्डर केस के लिए उनका नाम आ गया था, शंकराचार्य, तो पूरी तरह से हाहाकार पक गया था, या फिर अभी सत्यसाई बाबा चले गए, उनके लिए सोना मिला है ना, पता चल
उनके रूम में जिस रूम में थे रूम में
सोना मिला, हाँ तो लेकिन वो सोना मिला है ना, तो उससे लोगों का क्या विचार होता है, फिर लोग क्या बोलते हैं, ये क्या कर रहे हैं, लोगों के पैसे पे अपना मजाक कर रहे हैं इस तरह से, तो ऐसे उदाहरण लोगों पे आते हैं, लोगों का तुरंत विश्वास हो जाता है धर्म के ऊपर। इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है द वर्ल्ड डजंट नीड एक्सपर्ट पीपल, वर्ल्ड डजंट नीड करिश्माटिक पीपल, वर्ल्ड डजंट नीड वेरी बिग प्रीचर, वेरी बिग मैनेजर, बट वॉट वर्ल्ड नीड्स, वर्ल्ड नीड्स अ जेन्युइन साधु, एक प्रामाणिक साधु। वो अगर होगा तो लोग उसका पालन करेंगे, उसको उसका क्या बोलते हैं उसका जो है अनुसरण करेंगे अपने जीवन में। तो यही समाज को आज चाहिए होगा, और एक्चुअली हमारा वो जिम्मेदारी है, तो इस काम में हैं हम, तो ये सबसे बड़ा जिम्मेदारी है हमारा, जो किस तरह से हमारा जीवन ऐसा जीते हैं किसी के लोगों को प्रेरणा मिले, लाइफ ऑफ ऑनेस्टी। तो बहुत सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे तो बाद इनिशियली ये साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में आता है। तो प्रभुपाद के दो शिष्य थे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए थे, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाने के बाद वापस आए तो एक माता जी ने उनको लेटर लिखा प्रभुपाद को कि आपके जो शिष्य हैं वो कैसा व्यवहार करते हैं। तो हुआ क्या था कि नए शिष्य थे तो माता जी से थोड़ा डर के ही व्यवहार करते हैं, डर लगता है माया है कुछ हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा एकदम उनसे बात नहीं किया माता जी, टालते ऐसा बात किया। तो माता जी को बुरा लग गया, और व्यस्त की माता जी तुरंत लेटर लिखा ऐसे कैसे। तो प्रभुपाद ने उस समय तुरंत लेटर का जवाब दिया, सुंदर आता साइंस ऑफ रियलाइजेशन कि ठीक है उन्होंने ऐसा व्यवहार किया लेकिन नए भक्त हैं और निश्चित उनको आप इस तरह से देखिए कि कितना चुनौती स्वीकार कर रहे हैं और बाहर जा रहे हैं संसार में और किताबें बांट रहे हैं। तो प्रभुपाद ने उनका पक्ष लिया, उन्होंने कहा कि हम भी उनको सिखाएंगे इस तरह से। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया जहाँ प्रभुपाद ने उनका पक्ष लिया, लेकिन एक और एंगल से देखा जाए तो उनके व्यवहार में तुरंत व्यक्ति डिस्टर्ब हो गए, वो माता जी डिस्टर्ब हो गई थी प्रभुपाद, लेकिन उन्होंने जाना कि नए भक्त हैं इसलिए उन्होंने उनका पक्ष लिया। लेकिन उसके विपरीत अगर हम देखेंगे, इस्कॉन ने कल ही में सुन रहा था कि 1972 से लेकर 1977-76 तक मैक्सिमम बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एक दिन में 13,000 किताबों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एक दिन में 13,000, जैसे लाखों लाखों किताबों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। और अभी भक्तों को टेक्निक मिल गया डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करने का, तो बोल रहे थे बाय हुक और क्रूक डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, तो लोगों के पास जाते थे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो बोलते थे ये बुक ले लीजिए तो डोनेशन दीजिए, तो डोनेशन देते थे, तो बोलते थे कि लोग बोलते थे कि हमारे पास थोड़ा चेंज, इतना नहीं देना थोड़ा देना, चेंज है क्या, तो वो तो चेंज नहीं और बुक ले लीजिए, जबरदस्ती बुक कमा लेते इस तरह से। तो उस समय बहुत डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, लेकिन इसका परिणाम क्या हो गया, उसके बाद लाखों लाखों किताबें गई, उसके बाद कुछ सालों बाद इस्कॉन इसका ऐसा छवि उड़ गया उन देशों में, एयरपोर्ट प्रीचिंग बैन हो गया, उसके बाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन लोग इस्कॉन के भक्त को देख के किताबें लेने के लिए भी जाते नहीं थे, यानी 2-4 साल अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, लाखों लाखों किताबें गई, उसके बाद अभी तक इस्कॉन सफर कर रहा है। क्यों? क्योंकि सही तरह से पेश नहीं आया भक्तों के साथ, अरे लोगों के साथ सही तरह से पेश नहीं आया, तो अभी उसके कारण यहाँ तक मतलब व्यवहार इतना मायने रखता है लोगों को, हमको लोगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। सिंगापुर एक बार एक टीचर गए थे, सिंगापुर में देखा जाए तो वहाँ अलाउड था इस्कॉन के भक्तों को भी अलाउड था, और वहाँ ज़्यादा देवी देवताओं की उपासना होते हैं, जाने के बाद पहला प्रवचन ही देवी देवताओं के ऊपर चालू कर दिया, नए लोग हैं सिंगापुर के, ये विदेशी है सिंगापुर के निवासी नहीं है, और यहाँ के देवी देवताओं का इतना उन्होंने खंडन किया और देवी देवता की उपासना का खंडन किया, उसके बाद से आज तक सिंगापुर में इस्कॉन को एंट्री नहीं है। प्रचार की बात ही अलग है। तो अपने जो सन्यासी जाते हैं वो शर्ट पैंट पहन के विग लगा के या बाल बड़े करके जाते हैं, कंठी माला छुपा के जाते हैं, और फिर भी वो बोलते हैं आप इंडिया से हरे कृष्णा डायरेक्टली बोलते हैं, हमारे मुंह से अगर कोई बोले तो हमारे मुंह से क्या निकलता है, हरे कृष्णा निकल जाता है, निकला तो सीधा अगले फ्लाइट से पीछे भी जाते, ऐसा हुआ है, वो भी बहुत चतुर है, देख के तुरंत ऐसा सब कुछ बोलते, मतलब कितना छुपा के जाने के बाद भी इस तरह से होता है, यानी भक्त करना क्या चाहते हैं, प्रचारी करना चाहते हैं, लेकिन व्यवहार बहुत मायने रखता है हमारा, किस तरह से हम अभी सोचिए ट्रेन में हम जा रहे हैं, तो हमारी सीट पर बैठ गया तो हमें क्या करना है, आप जा रहे हैं वृंदावन यहाँ से और चार पांच जन आके बैठ गए आपकी सीट पर, रात का सोने का समय हो गया, फूल होने का, क्या करेंगे, हमारा सीट नहीं, लेकिन हमको बैठने का है, हमारे पास सीट नहीं है, सीट नहीं मिला हमको, वेटिंग में है, रियली हमारा क्या प्रवृत्ति होता है, गुस्सा हो गया, तो मार बहुत बार होता है कि बाहर के लोग और हमारे इतना ज्यादा फर्क नहीं है, बस अभी से भक्ति में आए हेड शेव किया है, धोती कुर्ता पहना, और कुछ ज्यादा परिवर्तन है, तो तुरंत पकड़ के मारपीट चालू हो जाती है, गाली गलौज चालू हो जाता है, इस तरह से सब लोग देख रहे होते हैं, वो उस व्यक्ति को कुछ नहीं बोलेंगे, हमको क्या बोलेंगे कि ये भक्त लोग ऐसा कैसे बोलते हैं, ऐसा कैसे व्यवहार करते हैं, मारपीट तो कैसे दौड़े, इसलिए उस समय क्या होना चाहिए, हमें हमारे हाथ में इन चीज़ों को नहीं देना चाहिए, सीधा पुलिस को बुलाओ या किसी को बुलाओ और उनसे करवाओ, ऐसा करना, हमारे हाथ में लेंगे तो एकदम गलत व्यवहार होती है, या कभी कभी कोई अभी परसों में बुद्धि ट्यूशन करा था बस में, तो वहाँ पे जो ये होते हैं ना चिप्स वगैरह लेके जाते हैं वो भी होते हैं बस में, तो एक बस में क्या वो व्यक्ति आ रहा, दूसरे बस में गया, तीसरे बस में चढ़ा तो वो व्यक्ति आ गया, उसको गुस्सा आ गया, ऐसा तो मैं अनाउंस कर रहा था सब बस में बैठने के लिए और वो उधर ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, तो मैं क्या करता था कि वो जाने का उसको पहले अनाउंस करना चाहिए बाद में मैं कर रहा ताकि वो फालतू में गुस्सा ना हो, लेकिन उसको पता नहीं किसको भी हो गया, तुरंत वो मेरे पास आ गया था, उसे आँख घोर के देखते क्या सीधा हाथ उसने ऐसा होता किस तरह से, सब मैं देख रहा था, सब लोग देख रहे थे कि अभी क्या होने वाला है, किस तरह से, तो निश्चित हमारे अंदर भी रजगुण तमोगुण होते हैं, तो तुरंत ऐसा गुस्सा आ जाता है कि अरे ये क्या है, तो एक मारा तो सीधा फ्लैट हो जाएगा, अपने आप को क्या समझता है, किस तरह से है ना, ऐसा विचार आता है तुरंत मन में, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हम अगर भौतिक जगत में होते ऐसा करते तो बात अलग है, फिर भी क्या होता है कुछ भी व्यवहार किया हमने भौतिक जगत में तो क्या बोलते हैं, आपके माता पिता ने ऐसे सिखाया है, ऐसा विचार कर बोलते हैं, यानी सीधा वो माता पिता से कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे हमें ये जानना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक मोमेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा क्या व्यवहार है उसके ऊपर इस मूवमेंट का नाम ये लिखा जाएगा, तो जस्ट उस समय अलग अलग उस समय तुरंत विचार आए कि भाई अभी हमारे मन में जो विचार आता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है या हमारी संस्था ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो फिर उस समय तुरंत मैंने सीधा उसको ऐसा किया हरे कृष्ण, तुरंत क्या हरे कृष्ण, तो वैसे खड़ा रहा जैसे आँख भूल भूल के, तो तुरंत सब बस के लोग चिल्लाने लगे आप बाहर निकल जाओ, क्या कर रहे, मतलब उस व्यक्ति को उसको निकाल दिया बाहर, और फिर मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, लोग भगवत में चला गया, मैंने क्या लोग एक्सेप्ट किया उसे व्यवहार, तो बेसिकली लोग ये देखना चाहते हैं कि हम क्या करेंगे उसमें क्या बर्ताव करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि किस तरह से हम ऐसी अलग अलग परिस्थितियों में व्यवहार करते हैं, या भले वो ट्रेन में हो या एक ऐसे समय एक ग्रुप था माता जी लोग के साथ और बस में चढ़ गए और जगह थोड़ी थी, सब डिवोटी माता जी लोग और भाग के बैठने लगे, तो एक दूसरे से जरा झगड़ा करने लगे कौन बैठेगा सीट पर, उसे चलता रह गया, झगड़ा हो गया, कुछ माता जी ने जोर जबरदस्ती जाके बैठ गए, कुछ माता जी खड़ी, उसके बाद जो एक माता जी बैठी हुई थी उसके पास बाजू में एक दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ था, तो मुझे माता जी को कुछ दिखे, तो ये माता जी ने फिर सोचा कि भौतिक व्यक्ति बैठा है उसको प्रचार करना चाहिए, तो माता जी प्रचार करने लगे, तो व्यक्ति ने सीधा बोल दिया कि आप क्या प्रचार कर रहे हैं, आपके आचार को तो संभालो, आप एक दूसरे में झगड़ते रहे, मैंने क्या हो गया, प्रचार हो ही नहीं सकता है, पूरा नलीफाई हो गया उस तरह से, उसके विपरीत आपने कभी यह अनुभव किया है कि जब भक्त लोग एक साथ आते हैं, आदान प्रदान करते हैं प्रेम का, या प्रभुपाद के बहुत वरिष्ठ शिष्य कभी हम देखते हैं कि उनमें अच्छा आदान प्रदान है, सीनियर डिवोटीज में प्रेम का आदान प्रदान है, तो हमें कैसे लगता है, क्या 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 विचार आते हैं वो देखें। वुमेन के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ जाता है, हाँ, कि इसमें सही प्रकार के लोग हैं। और क्या होता है,
हम भी आपको भी देखते हैं कि हम भी अगर ऐसा ही प्यार करें आपसे,
हाँ, इस तरह से हम सीखते हैं, तो व्यवहार से हम कुछ सीख रहे हैं कि अगर हमारे हमारे सम भक्तों के अंदर भी ऐसा व्यवहार होगा तो कितना अच्छा होगा। और कुछ प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं, तो वो प्रेरणा स्रोत बढ़ जाते हैं, हमें आश्रय महसूस होता है कि संसार सही है जहाँ पे मैं आश्रय ले सकता हूँ, इस तरह से। तो ऐसे वो कुछ प्रचार नहीं कर रहे, उनका जो व्यवहार होता है वही हमको बहुत सीख दे रहा है कि नहीं। इसलिए कहते हैं कि सीजर्स वाइफ शुड बी अबाउट सस्पिशन, जूलियस सीजर, सीजर जो रशियन राजा थे, तो उनका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, बोलते कि अबाउट सस्पिशन, किसी ने उनके ऊपर कुछ क्या बोलते हैं आशंका भी नहीं करनी चाहिए। और इसके लिए चैतन्य महाप्रभु का लीला आता है, सन्यासी अल्प छिद्र सर्वलोक गायक, जैसे चैतन्य महाप्रभु थे तो एक विधवा स्त्री थी, बहुत सुंदर थी और नौजवान थी, उसका बच्चा था छोटा सा, 5 साल का वगैरह हुआ, सावले रंग का, और उसे चैतन्य महाप्रभु से बहुत प्रेम था, तो बार बार चैतन्य महाप्रभु मिलने आता था, और क्योंकि वो सांवले रंग का था, बहुत सुंदर था, तो उसके चैतन्य महाप्रभु कृष्ण स्मरण होता था, उनको पता नहीं था किसका लड़का है क्या है, तो आने के बाद चैतन्य महाप्रभु उसको बहुत स्नेह देते। तो एक दो बार दामोदर पंडित ने देखा, जो चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर थे, और उनको पता था कि ये लड़का जो है उस विधवा स्त्री का है, और वो क्या करते, वो लड़के को डांटते थे, चले जाओ आओ मत वापस, तो 2-3 बार किया, लेकिन लड़का किसी न किसी तरह हाजिर हो रहा। तो एक बार फिर चैतन्य महाप्रभु के पास दामोदर पंडित आए और उन्होंने कहा कि आपको पता है ये लड़का उस विधवा स्त्री का है, तो अगर आप इसको इतना स्नेह दिखाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे कि आपका उस स्त्री के साथ कुछ संबंध है। तो सन्यासी अल्प छिद्र सर्वोच्च है, इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए, मतलब कोई कनेक्शन कुछ भी नहीं है, लेकिन किस तरह से व्यक्ति कुछ कर सकते हैं, इसलिए बहुत सतर्क होना चाहिए। जैसे देखिए, जैसे इस्कॉन के बारे में भी अलग अलग यहाँ पे बताया जाता है कि अलग अलग धारणाएं आती हैं, स्पेसिफिकली ब्रह्मचारी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपना जीवन जो जी रहा है वो सोसाइटी में, जैसे हम गृहस्थों के साथ व्यवहार करते हैं, फिर बाहर वाले लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, वो प्रॉपरली एक साधु का होना चाहिए। अगर ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी मतलब इन जनरल कोई भी डिवोटी, ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी, ये हम स्पेशली क्लास में इसलिए बात कर रहे हैं, अगर हम बहुत गर्व से व्यवहार करेंगे तो जैसे हम भी वो छोटे श्रृंगी की तरह हो गए जो क्या कर रहा है, परीक्षित महाराज के ऊपर गर्व दिखा रहा है। देखा जाए तो ब्रह्मचारी जो होता है वो पूरे समाज का एक पैर होता है, जैसे बोलते हैं ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र, तो ब्रह्मचारी को गृहस्थों का भी आदर करना चाहिए, वरिष्ठ जो लोग होते हैं उनका भी आदर करना चाहिए। देखो कहीं भी हम जाते हैं, बस में भी जा रहे हैं या लोकल में भी जा रहे हैं, लोग देखते रहते हैं हमारे तरफ, देखा आपने कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे समय बिता रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम चाहे या ना चाहे क्या हो जाता है, जैसे ही हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं हम लीडर बन जाते हैं ऐसा, और लीडर को चाहिए कि उसका जीवन आदर्श हो, तभी लोग उससे एग्जाम्पल ले पाएंगे। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में यहाँ पे कोई उत्तर मैं श्लोक दिखाता हूँ, ये भीष्मदेव उनका उपदेश आता है, उसमें भीष्मदेव बताते हैं श्लोक नंबर 26-27 लगा है। ढूंढने को शायद हाँ यहाँ पे लिख रहे हैं, प्रॉपर लिखते हैं, फॉर लर्निंग वैदिक नॉलेज वन मस्ट अप्रोच अ पर्सन हु इज 10% एंगेज। ये भीष्म देव जो है वो उपदेश कर रहे हैं फॉर बेसिकली वो बोल रहे हैं कि अगर किसी को जो लीडर या टीचर बनता है तो आजकल के जमाने में टीचर कैसा होता है कि किसको नॉमिनेट करते हैं, जो पढ़ा है देखते हैं बी एड किया है उसने, अच्छा कोई डिग्री है उसका, उसको नॉमिनेट करते हैं। तो अभी मैंने अपने जीवन में देखा, जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था तब हमारे एक टीचर, अभी तक मुझे उनका नाम याद है, सिद्दीकी सर हमारे मैथ के टीचर थे, वो पान खाते थे और पढ़ाने में अच्छे थे लेकिन जो आचरण जो है, मैं 5th स्टैंडर्ड में ही था लेकिन लड़कियां जो है उनके साथ ज़्यादा घूमते मिलते थे, तो 5th स्टैंडर्ड में था लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, ये क्या किसको भी गड़बड़ है। और मुझे याद है कि 1st स्टैंडर्ड में था तो एक टीचर थे एकदम आचरण में फर्स्ट क्लास थे, और इवन इंजीनियरिंग कॉलेज में भी गया मैं तो एक टीचर थे हमारे मैथ के टीचर थे, फिर वो बच्चे ऐसे मजा उड़ा रहे थे रुपये डाल के ऐसे ठीक रहा हो गया, तो वो फिर प्रचार तुरंत उन्हें बोला ठीक है मैथ क्लास रोकते हैं, और फिर बताने लगे क्या व्यवहार होता है क्या आचरण होता है, और वो बहुत अच्छे प्रोफेसर थे, तो उनको उनको देख के एकदम उनके उनसे सुन के और उनका जीवन देख के एकदम प्रेरणा मिली। और वो 1st स्टैंडर्ड का भी उनका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, 1st स्टैंडर्ड यानी बहुत ही पहले का था, लेकिन अभी भी देखता हूँ उनको जब भी हमारे गांव में है वो, तो देखने का तुरंत मुझे उनके ऊपर श्रद्धा आ जाती है, क्यों क्योंकि उनका आचरण वैसा था। तो ऐसा बताया जाता है वैदिक सभ्यता में जो शिक्षक होता था उसको क्वालिफिकेशन एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेस के ऊपर ही सिलेक्ट किया जाता, ऐसा नहीं था, लेकिन उसका चरित्र कैसा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसीलिए साधु के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, उसका चरित्र है, और चरित्र में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा आती है। जैसे आज भी अगर देखा जाए अपना बुढ़ा के शुरू बता रहे थे स्त्री और धन, ये दोनों चीज़ें आचरण में अगर देखेंगे कि ब्रह्मचारी है जो स्त्रियों के साथ बहुत करीबी बात कर रहा है, तो फिर तुरंत लोगों का जो है, या इवन गृहस्थ भी होता है वो ज़्यादा स्त्रियों के साथ बात कर रहा है, उसके लिए उसकी पत्नी ही जो है वो उसके साथ वो बात कर देता है, इतर स्त्रियों के साथ बात करेगा तो लोग अच्छी तरह नहीं देखते उसको। इसलिए जो साधु है, साधु यानी ब्रह्मचारी गृहस्थ सब साधु ही होता है, तो ये किए हो गया स्त्री के साथ हमारा कनेक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जितना हम अभी तो फिलहाल तो बिल्कुल जैसे 1-3-4 साल तो बिल्कुल नहीं, बाद में इनके पुजारी माने तो पुजारी सेवा के लिए कुछ थोड़ा बहुत काम है, सिर्फ काम के उतना काम और कुछ नहीं, हमारा काम ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब पुरुष पीछे हमारे लिए जरूरत नहीं है, ब्रह्मचारी पीछे अलग है, स्त्री वो पुरुष वो गृहस्थ के लिए हो गया, लेकिन हमारे लिए बिल्कुल नहीं है, तो हमें उससे एकदम अलग रहना चाहिए। और सेवा के लिए जैसे तीसरे स्तर में भी बताया गया कि स्त्री से सेवा स्वीकार नहीं करनी चाहिए, अगर जब भी कोई स्त्री से सेवा स्वीकार करता है ना उसका निर्णय का मार्ग तैयार होगा। तो उसको एग्जाम्पल देते हैं कि जंगल होता है जंगल में बहुत बार अंधे कुएं होते हैं। अंधे कुएं यानी पहले कुआं था और फिर बाद में समय में वो सूख गया और वहाँ जंगल आ गया, तो किसी को पता नहीं, तो सूखा हुआ कुआं जो बहुत गहरा है, और कभी कभी उसके आजू बाजू में घास उगाती है, पेड़ और घास, हरी भरी घास उगाती है। तो जब कोई राहगीर या मुसाफिर जब जा रहा होता है, उसे पता नहीं होता, उसे तो क्या दिखता है कि यहाँ घास है वहाँ घास है, उसके ऊपर नहीं चलता, वो सीधा अंधे कुएं में गिर जाता है। तो वो हरी हरी घास को देख के, और एग्जाम्पल आता है जैसा कि हिरण होता है, हिरण उस हरी घास को देख के आकर्षित हो जाता है और उसको खाने के लिए जाता है और फिर अंदर गिर जाता है। तो हरी घास वो स्त्री के शरीर के बारे में है या स्त्री के बारे में है, स्त्री को देख के व्यक्ति आकर्षित होता है, वो ग्रह अंदर कूपन उसमें गिर जाता है, तो उससे छुटकारा उसका मुश्किल होता है। इसलिए हमें स्त्री से पर्सनली बात नहीं करना चाहिए, अकेले में बात नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम अभी सोचिए, अगर कोई इन जनरल एग्जांपल कोई एक पुरुष स्त्री से बात कर रहा है तो मन में क्या विचार आता है, कुछ तो गड़बड़ है ना। इसलिए ब्रह्मचारी का ये पॉलिसी होना चाहिए कि हम कभी भी अगर स्त्री से बात करेंगे, सेवा के लिए भी हो कि अकेले नहीं हो, एक भक्त हमारे साथ में, और ज्यादा समय नहीं, जस्ट थोड़े देर बस, अभी तो हमारा कोई संबंध भी नहीं आना चाहिए। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जब जाते हैं तो क्या है, बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम दिखा सकते हैं, और माता जी कोई पर्सनली आती है अप्रोच करती है क्या है, ये तो दिखा दिए, ज़्यादा उनको प्रचार करने की जरूरत नहीं, उनके लिए प्रभु जी से प्रचार करेंगे, हमें ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, हम करेंगे तो हमारा भी मन जो है विचलित हो जाता है इस तरह से। इसलिए अब समाज भी देखता है कि ये स्त्री के साथ बात कर रहा है तो तुरंत लोग इसको गलत दृष्टि से देखते हैं, इसलिए वो बिल्कुल ही उस चीज़ का संबंध हमारा नहीं होता, स्त्री से कुछ लेना देना नहीं होता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इसका सोसाइटी में भी। इवन यहाँ तक कि एक एग्जांपल आता है कि एक बार एक सन्यासी थे और अच्छे प्रचार कर रहे थे, तो उनकी एक शिष्या थी जो उनके पति का निधन हो गया, तो विधवा हो गई, और वो बहुत ही क्या बोलते हैं उस समय मुश्किल अवस्था में जा रही थी वो, तो इसीलिए वो सन्यासी उनको मार्गदर्शन कर रहे थे, सांत्वना दे रहे थे पूरा अच्छे भाव से। हुआ क्या कि उनके बाकी जो शिष्यों को डर लगने लगा, करे ये स्वामी जी हैं, हमारे गुरु जी हैं, वो ये माता जी के साथ थोड़ा समय बिता रहे हैं तो कुछ शायद हो सकता है, तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने और एक वरिष्ठ भक्त को बताया गुरु के लेवल से कि देखिए, तो उन्होंने बताया सन्यासी को, सन्यासी से सुना अपना अच्छा चलगा, ऐसा हो गया, ऐसा डिस्टर्ब हो रहा है मेरे कारण, तो उन्होंने क्या किया फिर तुरंत और एक सीनियर माता जी को बुलाया और कहिए आप अभी इसका मार्गदर्शन देखिए उस माता जी को, इसलिए यानी वैसे स्तर के व्यक्ति के प्रति भी हमको डर लग जाता है, समझ रहे ना कि कुछ हो जाएगा कैसे इस तरह से। अब ऐसा नहीं कि हो जाएगा क्या, ऐसे एग्जाम्पल भी कि हो जाता है, एक्चुअली क्या करना चाहिए हमको कि हमें आंखें बंद भी नहीं करनी चाहिए, निश्चित हमें ये जानना चाहिए कि वो कुछ सेवा के लिए वगैरह कुछ होगा या क्या है, लेकिन हमें किसी वरिष्ठ भक्त को बताना चाहिए ऐसा ऐसा मैं देख रहा हूँ उस तरह, हम हमें कुछ डिसीजन लेना नहीं, हमें कुछ जज नहीं करना है, लेकिन किसी को पता अगर उनको बताएंगे, अगर कुछ नहीं है तो बताएंगे हमको कि ऐसा ऐसा है, चिंता मत कीजिए या फिर कुछ होगा तुमको पता चलेगा इस तरह से। इसलिए बाय प्रिंसिपल ब्रह्मचारी में ज़्यादा माता जी के साथ बात करना, चर्चा करना, उनको फ़ोन करना, उनके डायरेक्टरी में फ़ोन नंबर रखना, फिर कॉल करना, ये सब चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं। अभी समझो अभी यहाँ तक कि सीनियर वगैरह को भी माता जी ड्यूटी में समझो तो सेवा होता है, तो माता जी को कॉल करने की जगह उनके पति जी को कॉल करना, पति को बताओ, पति माता जी को बताएं, समझ रहे हैं। उससे क्या होता है कि पति को लगता है कि जो भी कुछ मेरी पत्नी कर रही है उनको पता है, इससे वो निश्चिंत रहते हैं और उससे हमारा संस्था का नाम खराब नहीं होता, ये बहुत महत्वपूर्ण। इसीलिए तो ये बार बार अगर देखा जाए सबसे बड़ा क्या बोलते हैं उसको प्रॉब्लम आता है ब्रह्मचारी के जीवन में कि स्त्री से हमें बिल्कुल दूर रखते हैं। अलग अलग चीज़ों में न्यूज़ पेपर होता है तो उसमें आता है, कभी कभी गैजेट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट उसमें कभी ये चीज़ें आती हैं, तो उससे हम जितना अलग रहेंगे तो उतना हम शुद्ध रहेंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और नहीं तो हम खुद अपने जीवन में वीक हो जाएंगे आध्यात्मिक जीवन में, तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्या होता है कि उसके कारण फिर हम प्रचार क्षमता भी नहीं कर सकते हैं, लोगों को बता नहीं सकते हैं। फिर सन्यासी ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो सन्यासी भी देखा जाए तो इस्लाम में सन्यासी हो या ब्रह्मचारी हो सबको साधु की तरह देखा जाता है, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ब्रह्मचारी में कभी वो लेक्चर लेंगे यू नो, आप देखिए 8 प्रिंसिपल होते हैं ब्रह्मचारी के, प्रेक्षणम स्मरणम प्रेक्षणम गुह्य भाषणम केली, अलग अलग चीज़ें, स्त्री को देखना, स्त्री के बारे में चिंतन करना, स्त्री से हंसी मजाक, कॉलेज में देखा ना लड़के लड़कियाँ कैसे एक दूसरे से हंसी मजाक करते, तो बिल्कुल स्त्री के साथ कोई ऐसा हंसी मजाक नहीं होना चाहिए। जो ब्रह्मचारी होता है एकदम क्या बोलते हैं, अगर कोई सेवा पड़ी थोड़ा सा सेवा, कैसे हैं कैसे हैं ठीक है क्या हाल चाल है, कोई जरूरत नहीं है, व्यस्त लोग देखेंगे, हमें कोई हलचल किसी की हंसी मजाक कुछ नहीं होता, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक हो गया, और दूसरा जो है धन, धन अर्थात उसका ऐश्वर्य भी आता है। जो हमारे मंदिर में भी एक बार ऐसा बोला कि हाँ क्या टाइम पे खा टाइम पे सोते हैं, मोबाइल पे बात करते हैं और सुमो में घूमते हैं, मतलब ऐसा मतलब कुछ कॉन्ग्रीगेशन ड्यूटी ऐसा बोलने लगे थे, अरे सोची हैवी है ना कैसा ये हो जाता है, मतलब तुरंत वो गलत, अभी किसी को मजाक किसी को शौक नहीं पड़ा है सुमो में घूमने का, प्रचार के लिए जा रहे हैं, लेकिन लोग उसको उस तरह से देखते हैं। तो पहले जब मोबाइल आया था तब तो बहुत ही हालत खराब, मतलब क्योंकि जब भी कभी मोबाइल दे तो पंडित जी आप भी सीधा ऐसा विचार आ जाता है ना, तो पब्लिक के लिए अभी तो कॉमन हो गया है इसीलिए अभी इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन शुरुआत में आया था तो इसीलिए पब्लिकली हमको एकदम प्रॉपर अपना पेश आना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो मोबाइल वगैरह कॉमन हो गया है, कहीं भी यूज़ करते हैं इनिशियली, लेकिन बहुत ऐसा है, इसलिए जैसे बोलते हैं कि हमें कॉस्टली चीज़ें नहीं पहननी चाहिए, ब्रह्मचारी है एकदम, तो सादगी का जीवन होना चाहिए, बहुत अगर कॉस्टली है बढ़िया एकदम गोल्ड रिंग पहना हुआ है तो कैसे लगेगा, ब्रह्मचारी है या कोई राजा है कि नहीं, तो वैसे नहीं होना चाहिए, सादगी का जीवन होना चाहिए, जितना सिंपल। अभी एक डिवोटी जैसे राधा गोविंद मंदिरा रो आते प्रीचिंग करने के लिए आते थे, तो क्या होता था कि उनको कांग्रेगेशन लोग बोलते थे प्रभु जी आप आ रहे हैं, अभी वो दुर्गम चौपाटी मंदिर वहाँ से आते थे, तो आते हैं तो सीधा वो उनको बोला कि आपको हम लक्ष्मी देते हैं प्रभु जी, आप सबसे टैक्सी में आ जाइए, क्योंकि वो तो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मैं टैक्सी में नहीं लोकल में आऊँगा, तो उन्होंने कहा हम लक्ष्मी देते थे आपका लोकल का फर्स्ट क्लास पास निकाले, फर्स्ट क्लास आ जाती है, अब शाम के समय अगर आ रहे हैं मीरा रोड तो कैसा होगा, तो बोले नहीं मैं जनरल क्लास में आता, तो जनरल क्लास में आते थे और उनका क्या अनुभव है उसको देख के कॉन्ग्रीगेशन बहुत उनका विश्वास बढ़ गया, ये साधु है साधवी का जीवन। और एक भक्त उनको जैसे कॉन्ग्रीगेशन लोग ठंडी में स्वेटर देते हैं, तो एक भक्त को स्वेटर दिया उन्होंने, सबको दिया, तो 4 साल के बाद वो वापस स्वेटर दे रहे थे, तो इस भक्त के पास आए स्वेटर देने के लिए, तो इसने कहा नहीं मेरे पास है, आपके पास है हाँ आपने दिया था 4 साल पहले, निकाल के दिखाया वैसा ही वैसा स्वेटर एकदम फर्स्ट क्लास स्वेटर, जो हमारे साथ यूज़ कर देखिए, अरे ये कितना ख्याल रखता है चीज़ों का, पूरा पूरा विश्वास उनका बैठ गया इनके ऊपर कि देखिए ये जो भक्त हैं ये क्या बोलते हैं उसको गैर जिम्मेदार नहीं है, हर चीजों का ख्याल रखते हैं। और वो कोर्ट करने लगे दो तीन जगह कैसे डिब्यूटी उनके चार साल से स्वेटर संभाल के था, चार साल से स्वेटर आप समझ रहे हैं ना। तो यानी ये एक्चुअली इन सब चीजों के द्वारा हम लोगों के हृदय को जीत सकते हैं, हमारा आचार भी वैसा होना बहुत महत्वपूर्ण है। यानी जब हम बोलते हैं कि धन धन में ऐश्वर्य आ जाता है, ऐश्वर्य सर ब्रह्मचारी यानी शादी का जो सेवा के लिए, हाँ वो सेवा के लिए हम अभी लैपटॉप यूज करते हैं या मोबाइल यूज करते हैं, सेवा के लिए यूज हो रहा है। हाँ जो सोसाइटी ऐसा आ गया है कि इसके बिना आदमी रह नहीं सकते, लेकिन उसमें भी देख सकते हैं कि हम कितना सिंपल हो सके उतना कर रहे हैं, जो सेवा के लिए जितना लग सके उस तरह। और उसमें अगर बहुत ही क्या बोलते हैं आलीशान और ये है वो है तो फिर थोड़ा ये होता है, देखना चाहिए जितना संभव। मतलब ऐसा भी नहीं कि सादगी के नाम पे हम वो साधु नहीं हैं जो अभी आप अगर सेकंड कैंटो में पढ़ेंगे दूसरे कानों में अब सुखदेव गोस्वामी साधु के बारे में बोलते हैं, बोलते हैं दिग्वाल कलालु बाहु सहस्त्रे उपबरणे किम, जब आपकी बाहें हैं तो पिलो की क्या जरूरत है, ऐसा सोच सकते हैं। जब पेड़ की खाल है तो कपड़े पहनने की क्या जरूरत है, जब आपके दो हाथ हैं तो बर्तन की क्या जरूरत है, और जब आपका पेट है जो खाना स्टोर कर सकता है तो छतरे की स्टोर करने की क्या जरूरत है। इस तरह से ये ब्रह्मचारी के लिए स्टैंडर्ड बताया गया हम शॉर्टर्म के लिए, तो वो भी एक स्टैंडर्ड है जब हम जंगल में रहते हैं, लेकिन अब हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो ऐसा हम नहीं कर पाएंगे, हमें प्रचार भी करना है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये चीज़ें बेसिक जरूरत पड़ेगी, जो प्रभुपाद भी हैं उनको देखेंगे कभी कभी कोई, अभी तो वो सन्यासी हैं उनको कोई ऐसा गोल्ड रिंग देता था तब तो उनसे आदान प्रदान तो करना है किसी को तो पहनते थे, और फिर कोई दूसरा आके सिंपल रिंग देता था वो पहनते ही उसको दे देते। आपको ब्रह्मचारी के लिए वो भी नहीं करना चाहिए कि गोल्ड रिंग दिया तो पहन दिया उसने, तो बस सन्यासी है और वर्ल्ड आचार्य हैं, लेकिन वो एकदम निराश सकते थे वो चीज़ से, अपने पास कुछ नहीं। एक बार गाड़ी में जा रहे हैं रोल्स रॉयस में, दूसरे दिन वो झोपड़े के अंदर बैठे हुए, ये भाव था उनका, पूरी तरह से अना सकते थे, लेकिन मूवमेंट के लिए जो लगेगा प्रचार के लिए जो लगेगा उसको यूज करते थे उतना ही, लेकिन पर्सनल यूज के लिए बिल्कुल ये चीज़ों का उपयोग नहीं करते। तो अगर ऐसा हमारा जीवन रहता है तब हम जो है लोगों के हृदय को छू सकते हैं और उनको आकर्षित कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और पॉइंट पूछता है, हाँ तो एक जैसे हमने बोला कि समाज में है पब्लिक में हमारा बिहेवियर प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर तो पूछा रहा कि हाउ कैन वी नो हु इज डिवोटी, प्रॉपर ने क्या उत्तर दिया था उसका, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई हू इज योर डिवोटी, माई डिवोटी इज अ पर्सन जेंटलमैन। यानी अगर उस समाज में जेंटलमैन है वो किसी के साथ भी व्यवहार कर रहे हैं एकदम स्त्री के साथ माता जी, व्यक्तियों के साथ उनको आदर से व्यवहार करना है, गाली गलौज या डांटना वगैरह उस तरह से नहीं होना चाहिए। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु का व्यवहार देखेंगे ना तो एकदम आदर्श है, यहाँ तक कि केशव काश्मीरी जैसा व्यक्ति आया था, सुना होगा ना मैं केशव काश्मीरी का मिला, तो कितना गर्वी थे, गर्वी था वो, गर्वी स्कॉलर, और आया था चैतन्यमहाप्रभु को हराने के लिए, लेकिन चैतन्यमहाप्रभु का व्यवहार कैसे था उनके साथ, चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि अगर मैं इसको इसके साथ डिबेट करूंगा ये तो हारने वाला है, और इतना बड़ा पंडित है अगर सबके सामने वो हार गया तो क्या होगा, वो जीवित नहीं रह सकता, आत्महत्या कर लेगा, लेकिन मेरा उद्देश्य है उसको मारना, मेरा उद्देश्य है उसका हृदय परिवर्तन करना। इसलिए वो सोच रहे थे कि मैं किस तरह से व्यवहार करूं जिससे कि उसका हृदय परिवर्तन हो। फिर उन्होंने क्या किया, जैसे केशव काश्मीरी आया वो डिबेट बोलने की तरह पहले ही बोल दिया गया, आप इतने महान हैं, हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ पे आ गए हैं, इसलिए अब यहाँ आ ही गए हैं तो कृपया करके गंगा का गुणगान कर दीजिए, यानी बोला नहीं डिबेट चालू हो गया कर, ऐसे ही चालू कर दिया उन्होंने, तो उसने गंगा का गुणगान किया, फिर बोला कि वाह आप तो एकदम बिजली की तेजी में एक गंगा को गुणगान कर दिया है, तो अभी बताइए इसमें जो आपने श्लोक बोले हैं वो श्लोकों में अच्छाई कहा है और त्रुटियां कहा है। तब केशव काश्मीर जो है, आज तक किसने मेरे श्लोक में त्रुटि देखी नहीं, आप कैसे कह सकते त्रुटि है? तो नहीं, ऐसा नहीं है कि हो जाता है अलग अलग चीजें, आप बताइए। तो फिर उन्होंने 1, 2, 3, 4 ऐसे अलग अलग त्रुटि बताई और पूरी तरह से केशव काश्मीरी चुप हो गए और उसके साथ उनके विद्यार्थी हंसने लगे, चले उन्होंने बोले हंसी क्यों, क्योंकि बहुत अपमानित हो गए। मैंने एक सभ्य व्यक्ति की तरह उन्होंने व्यवहार किया उनके साथ, तो बहुत महत्वपूर्ण है हमारा पब्लिक में व्यवहार कैसा होता है, लोगों के साथ हमारे वरिष्ठों के साथ कैसा व्यवहार होता है, समूह भक्तों के साथ कैसे व्यवहार होता है, जूनियर भक्तों के साथ कैसा व्यवहार होता है, तो ये सब लोग देखते हैं, उसके कारण उनका विश्वास बढ़ेगा या विश्वास बढ़ेगा उस तरह। तो फिर बाद में केशव काश्मीरी यहाँ उतना होने के बाद फिर चैतन्य आपने क्या बोले, लेकिन एक्चुअली क्या है कि बड़े बड़े जो पोएट हुए कालिदास, उनके अगर दूसरी दृष्टि से देखा जाए उनके लिखने में भी कुछ त्रुटियाँ हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं, कल आप आइए फिर हम और चर्चा करेंगे। यानी उनके अहंकार को बिल्कुल उन्होंने ठीक नहीं पाते, तो इस तरह उन्होंने केशव काश्मीर के हृदय को जीत लिया। और फिर अगले दिन क्या हुआ, केशव कश्मीरी आके उन्होंने शरण स्वीकार की। क्यों शरण स्वीकार की? क्योंकि उनको अपमानित नहीं किया। यही नहीं, चेतनापुर में प्रकाश चंद्र सरस्वती मायावादी थे, हम बोलते मायावादी कृष्ण अपराधी, उनको देखने के बाद धुलाई करने के लिए, लेकिन यहाँ उन्होंने उनका भी सम्मान किया प्रकाश चंद्र सरस्वती का, जिसके द्वारा उनके हृदय को जीता और फिर उनको प्रचार किया। प्रॉपर यहाँ बीच पे जाते थे, जूह बीच के ऊपर, तो जूह बीच पे जाते थे, देखते थे, बोल रहे गुड मॉर्निंग, नहीं जूह बीच था या कोई और दूसरा बीच था, तो वहाँ लोगों मिलते थे गुड मॉर्निंग। अमेरिका में कहीं था, अमेरिका में भक्त वाली हरे कृष्ण बोल रही है, गुड मॉर्निंग बोल रही उस तरह से प्रॉपर, मतलब कोई भी मिलता था उसको बोलते गुड मॉर्निंग, है ना, स्ट्राइकिंग रिलेशनशिप, फ्रेंडली बनाना। फिर वो भी देखते कौन है आश्चर्य से, गुड मॉर्निंग तो बोलते गुड मॉर्निंग इस तरह। और अगले दिन प्रभुपाद जाने लगे तो क्या हुआ, लोग उनको हरे कृष्ण बोलने लगे, यानी प्रचार हुआ कि नहीं, ये किससे प्रचार हुआ, उनके आचार से प्रचार हुआ इस तरह। वो बोल सकते थे, मतलब बोलिया नहीं भी बोल सकते, कुछ भी ऐसे निग्लेक्ट कर सकते थे, लेकिन प्रभुपाद एक छोटी चीजों को देखते थे, उस तरह हम व्यवहार करते हैं। इवन अभी एक एग्जांपल और देता हूँ मैं, इसके बाद अगर आपको कुछ प्रश्न वगैरह पूछ सकते हैं कि अथॉरिटी डीलिंग विथ इवन गवर्नमेंट अथॉरिटी, ये एग्जांपल आता है, अभी हाल ही में हुआ था कि साउथ इंडिया में एक जगह है, वहाँ पे एक लैंड इस्कॉन को डोनेशन मिला था, लेकिन जो जिसने डोनेशन दिया उसने बाद में विचार किया कि शायद इस्कॉन में मुझे पैसा देना चाहिए, तो पैसा मांगने लगा इस्कॉन में डोनेशन, तो वो क्या करने गुंडे भेजने लगा भक्तों को बाहर निकालने के लिए। हाँ, तो अभी भक्तों ने क्या किया, भक्त पुलिस के आगे कंप्लेन कर दिया, लेकिन पुलिस थोड़ा ढीला थे, तो भक्तों ने सीधा मोर्चा लेके गए पुलिस के बारे में, गाली गलौज कर लो, ये कर लो, वो कर लो, पुलिस बहुत गुस्सा हो गया उसके बाद, और उन्होंने कहा कि अभी देखिए क्या होता है, और पुलिस ने मदद करने की बिल्कुल मांग कर दी, तो प्रॉब्लम और बढ़ गया उसके कारण। क्यों? क्योंकि पुलिस का उन्होंने अपमान कर दिया, प्रॉपर चैनल से जाना चाहिए, इस तरह से झगड़ा झगड़ा करके कोई फायदा होता है। तो हुआ क्या, ये बात इस्कॉन के सन्यासी जयप्रकाश महाराज उनको पता चला, वो वहाँ के GBC, तो वो तुरंत वहाँ पे आए, क्योंकि माता बहुत टेंस हो गया था। हम तुरंत आने के बाद अभी भक्तों ने सोचा, उन्होंने कहा क्या हुआ, चलिए मुझे पुलिस स्टेशन लेके चला, सब भक्तों ने सोचा अभी तो पुलिस की खैर नहीं, क्योंकि ये GBC है, पूरा वर्ल्ड में पिछले करते हैं, इनके बड़े बड़े शिष्य है, अभी इसका तो ट्रांसफर हो जाएगा, निकाल देंगे पूरा पुलिस चौकी को बंद कर देंगे। तो जैसे ही लेके गए तो वहाँ फ्रंट टेबल पे पुलिस सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर भी नहीं सब इंस्पेक्टर बैठा हुआ, ये पता का महाराज जब सीधा दंडवत महाराज, दंडवत महाराज की पैसा, वो डर गया है, सन्यासी है, अभी भारत में समझता है सन्यासी क्या होता है,
स्वामी जी उठे, स्वामी जी क्या हो गया, स्वामी जी उठे,
जो नहीं नहीं आप पहले क्षमा कीजिए हमको, फिर मैं उठता
नहीं स्वामी जी क्षमा किया, उठे 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 क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया,
इस तरह से तो उठे और बोले कि देखिए ये जो हमारे भक्त लोग हैं वो अपने लिए कुछ भी लेते हैं, पूरा उन्होंने जीवन भगवान के निछावर किया है और ये चार महीने का पालन करते हैं, ये समाज में इस चीज़ का प्रचार कर रहे हैं, तो इस तरह से वो सब कार्य कर रहे हैं, अभी कुछ बाधाएं उनके ऊपर आ रही हैं तो हम आपका सरकार चाहते हैं, तो तुरंत वो बोला नहीं हम तो करने के लिए तैयार थे, ये थे वो थे, लेकिन देखिए वो हमको इस तरह से बोला, इस तरह से बताया, अभी आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए अभी, अभी कुछ नहीं होगा, हमें ख्याल रखिए, तो पूरा एकदम शिफ्ट हो गया एनवायरमेंट, क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक प्रॉपरली व्यवहार होता है, एक अधिकारी व्यक्ति होता है उसके साथ प्रॉपर व्यवहार, तो फिर तुरंत मतलब अभी वो जीवित जितने बड़े सन्यासी वो ऐसा व्यवहार कर सकते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा ऐसे अधिकारी कार्य के साथ हम भक्त हैं तो हमें ट्रांसेंडेंटल नहीं, यानी इसके साथ एक तो प्रॉपर व्यवहार, दूसरा सिग्नल होता है सिग्नल तोड़ना नहीं चाहिए, हम पुलिस का हम भक्त है तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा, तुरंत उनका विश्वास छूट जाता है। वी हैव टू फॉलो गवर्नमेंट लॉ, बेसिकली भक्त है तो भी गवर्नमेंट के नियमों को पालन करना है, अगर हम नहीं करेंगे तो फिर जो है पूरा सोसाइटी जो है या स्पेशली गवर्नमेंट हमारे अगेंस्ट हो जाता है, बहुत सिचुएशन आते हैं, कभी कोई टिकट होता है हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म टिकट लेके जाइए, अंदर जा रहे हैं टिकट नहीं लेके जाएंगे तो पुलिस टीसी तो बहुत बार पूछते भी नहीं हमको, है ना, कि बोलते कि साधु है इसीलिए ये कभी कुछ गड़बड़ तो करने वाले नहीं, इस तरह इसका ये अर्थ नहीं है कि हमें नियमों को पालन नहीं करना चाहिए, तो बोलते हैं तो आप साधु अगर आप नियमों को पालन नहीं करेंगे तो समाज से कैसे अपेक्षा कर सकते, ऐसे बोलते भी हो कभी कभी, तो हमें अगर हम समाज के या क्या बोलते हैं सिटी के या फिर गवर्नमेंट के रूल को फॉलो कर रहे हैं तो हम देखेंगे हमारे साथ भी उनका पूरा कोऑपरेशन है, और कैसे साधु यानी क्या हर चीज में परफेक्ट, वो कोई अभी ये चैतन्य महाप्रभु, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी आता है, गोपीनाथ पटनायक थे तो क्या था वो टैक्स कलेक्टर थे और वो कितना 12 लाख मुद्राएं कलेक्ट करते थे, उसमें से 2 लाख उनको रखना था, बाकी सब राजा को देना था, और राजा कौन था, राजा प्रताप सिंह भगवान के शुद्ध भक्त चैतन्य महाप्रभु राजा प्रताप सिंह, तो हुआ क्या कि उन्होंने कुछ मुद्राएं दी नहीं अपने पास ही रखी ऐसा हो, और ये खबर पहुंची राजा प्रताप रुद्र के पास, तो राजा प्रताप रुद्र ने उनके बेटे को कहा कि जाओ ये पैसा आप लेके आ जाओ, तो उनका बेटा गया तो बेटे ने कहा तो ये इन्होंने क्या किया कि ऐसी उड़ा दिया पैसा, क्या पैसा वापस दीजिए, तुमने बोला कि अभी तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है वैसा कीजिए मेरे पास जो घोड़े हैं आप घोड़े ले लीजिए, उसका कुछ दाम वो ले लीजिए, फिर बाकी पैसा मैं बाद में छुट्टा करता हूँ। फिर वो जो राजा का बेटा था वो थोड़ा लालची हो गया, उसने घोड़े का प्राइस बहुत कम बोल दिया, लेकिन उसका एक समस्या था कि कभी भी बात करता ऐसे ऊपर देखता था, बात करते करते ऐसे मतलब, तो किसी की अलग अलग आदतें होती है ना ऐसे, तो बुद्धिनाथ पटनायक ने राजा के बेटे को बोला कि मेरे घोड़े तो ऊपर नहीं देखते हैं, इतना कम प्राइस नहीं है अभी सोचिए। गोपीनाथ पटनायक वो राजा के बहुत निकट थे, जो राजा शुद्ध भक्त थे, और गोपीनाथ पटनायक भी बहुत चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पास थे, इसलिए दोनों का अच्छा संबंध था, लेकिन ऐसा बोल दिया, तो उससे हुआ है राजा का बेटा बहुत गुस्सा हो गया, और राजा का बेटा गुस्सा हो गया और सीधा आया राजा के पास, बोला कि ये गोपीनाथ पटनायक पैसा नहीं दे रहे हैं, उनको हमें चांगा पे चढ़ा देना चाहिए, उससे पैसा मिल जाएगा, ऐसा बोल दिया। राजा भी क्या बिजी था, उसने ठीक है करो, मैंने उसको मार डालो, चांगा यानी एक पहिया होता है, पहिए के ऊपर खड़े तलवार होती है, और व्यक्ति को ऊपर लटका जाता है, ऊपर से फेंक दिया जाता, तो सीधा अंदर आके पूरा चिड़े दे देंगे उसको, तो सब चैतन्य महाप्रभु के पास गए, बोला कि देखिए महाप्रभु इसको चांगे पे चढ़ा रहे हो, क्या हो गया, जिसने पैसे का अपराध कर दिया, बोले मैं कैसे बचा सकता हूँ, राजा की जो संपत्ति होती है तो भगवान की संपत्ति होती है, अगर उसको अगर कुछ किया है तो मैं कैसे बचा सकता हूँ, नहीं आप बचाइए, बोले अगर आप बार बार मुझे बोलेंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, अगर आपको बोलना है तो जगन्नाथ जी को प्रार्थना है, चेतन महाप्रभु ऐसा बोल रहे हैं। सोचिए मैंने किस तरह से हमें आदर्श व्यवहार करना चाहिए। आपको कथा आती है बाद में, फिर क्योंकि चेतन महाप्रभु को बताया है इस तरह से, तो फिर उनके एक राजा के मंत्री को दिखता है, वो हरिचंद्र नाम होता है, चेतन महाप्रभु के साथ में बोलते हैं कि देखिए इसको चांगा पे चढ़ा रहे गोपीनाथ पटनायक, वो तो महान भक्त हैं और इतने निकट हैं, और उनको चांगा पे चढ़ा रहे तो मार डालने का क्या उपयोग है, उसका पैसा भी मिलेगा नहीं, वो भी देगा। मैंने ऐसा बोला नहीं था मारने के लिए, मुझे तो पैसा चाहिए था। बोले जाओ रोको, तो तुरंत वो जाके रोकते हैं। यानी राजा को भी इतना पता नहीं था, बेटे ने ऐसा क्यों किया, क्यों तो बेटे के साथ प्रॉपर व्यवहार नहीं किया। देखिए रूपा बहुत मेटिकुलस रहता है ये बताने में भी। एक बार क्या हुआ था, एक गार्डन था, तो भगवान ने फूल दिए थे, तो भक्त क्या गार्डन के कंपाउंड से फूल लेके आए और प्रभुपाद को दिया, भगवान को सलाम दिया। प्रभुपाद ने कहा फूल कहाँ से लाए, बोले वो गार्डन से। बोले मालिक से पूछ के लाए, सब कुछ भगवान की संपत्ति है तो भगवान किस समय लगा रहे। तो प्रभुपाद ने कहा भगवान की संपत्ति, लेकिन अभी वो उनके आश्रय में, इसलिए उनके परमिशन से लाए, नहीं तो उसको क्या कहा जाएगा, चोरी कहा जाएगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है हमारा ये कि हम इस तरह से प्रॉपर, अगर अलग अलग जगह पे देख सकते हैं, भक्तों के बीच में व्यवहार, भौतिकवादियों के साथ व्यवहार, स्त्री के साथ व्यवहार, वरिष्ठों के साथ व्यवहार, बाद में गवर्नमेंट के साथ व्यवहार, चीज़ों के साथ व्यवहार। सोचिए अभी हम आ रहे हैं, सब भक्त अभक्त वहाँ पे रेलवे स्टेशन पर होंगे, खड़े मुंबई से मुंबई जा रहे हैं, और सीधा दरवाजा है, धार से लात मारते हैं और अंदर प्रवेश करते हैं। बचपन में आदत है ना, दरवाजे को लात मार के खोल जाएगी, क्या लोगों को कैसा लगेगा, साधु है कौन है ना, साधु लगे नहीं, नहीं अरे ऐसे कैसे साधु है, प्रेम तो खुलना चाहिए, अलग हाथ से, ये चीज हाथ से खुली जाती, लात से नहीं। तुरंत तुरंत लोग पकड़ लेते हैं इस चीज को। सोचिए यानी चीजों के साथ भी हम कैसा व्यवहार करें, लोगों के साथ, चीजों के साथ, भक्तों के साथ, तो उस तरह से हम प्रॉपर आदर्श कर सकते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन भी करने का, पुश करने का, उसका पुशिंग होना है, पुश करने का, लेकिन झूठ बोल के नहीं देने का, जबरदस्ती नहीं देने का। बहुत लोग जाते समय गुस्सा होके नहीं जाना है, क्योंकि गुस्सा होके गए लेके कल को वो नहीं लेंगे। एक व्यक्ति भी जो असंतुष्ट होता है, स्टैटिस्टिक से 11 लोगों को बताता है कि अच्छे लोग नहीं, अच्छे लोग नहीं, अच्छे लोग नहीं, अच्छे लोग नहीं, और वैसा पहुँचता है। इसलिए हमको वो नहीं करने का। आप किताबें डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उसके जोर पर किताब दिखा सकते हैं, उसको फोटो दिखा सकते हैं, कुछ श्लोक पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, श्लोक पढ़ेंगे तो बोलते हैं गीता पूरी है क्या, हम बोलते हैं देखो पहला श्लोक आता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, आखिरी श्लोक है यत्र योगेश्वर है कृष्ण यत्र पार्थ, ये पूरा है देखिए, तो देखते हैं अरे हाँ क्यों पूरा गीता है, कैसे पता, इसने बोला श्लोक बोला, अरे विश्वास बढ़ जाता समझ रहे, तो इतना फर्क पड़ जाता है। तो उसके वी हैव टू सेल द बुक्स ऑन द मेरिट ऑफ बुक्स, उस तरह करेंगे तो हम सही में आप लोगों समाज तक हम पहुँच। नहीं तो रखता हूँ तो एक प्रश्न अगर पूछ सकते हैं तो फिर बुरा स्वभाव ही है, भौतिक जगत में हम रह रहे हैं, भौतिक चीज़ों का भी कितना समय मिल रहा है हमको, या हम खुद अभी देखा जाए तो भौतिक अवस्था में है कि नहीं, तो भौतिक अवस्था में है हमको, अगर उनके स्तर पे जाना है तो जो भक्त और ज्यादा प्रगति उनका संग करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, और फिर नहीं होता इसीलिए ब्रह्मचर्य संग और अच्छा चीज होगा, साधु संग बहुत ज्यादा होता है, और फिर इसीलिए हमें और प्रगति का चांसेस है उस तरफ से, और फिर चेतना हमारी नीचे आ जाती है। इसलिए इसलिए क्या बताया गया, रेगुलरली हमें शास्त्र को पढ़ना चाहिए, रेगुलरली हमको जो है श्रवण करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि एक तो अगर कोई वरिष्ठ शिष्य आते हैं उनके साथ हम संबंध देख सकते हैं, नहीं तो प्रभुपाद के साथ हमारा संबंध होगा, लेक्चर के द्वारा अलग अलग भक्तों से संग कर रहे हैं या किताब के द्वारा प्रभुपाद के साथ संग कर रहे हैं, उससे हमारा प्रेरणा बना रहेगा। जब भी ऐसे प्रसंग हैं जो प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्य आते हैं, कोई वरिष्ठ भक्त आते हैं, उनसे हमें तत्पर रहना ही संग कर रहे हैं, जिससे हमारी और प्रेरणा बढ़ेगी और उत्साह बढ़ेगा, और ये चलता रहेगा। धीरे धीरे ऐसे समय आएगा कि जिससे हम अभी हमारा जैसे एकदम अप डाउन बहुत जल्दी हो जाता है, बैटरी चार्ज डिस्चार्ज बहुत जल्दी हो जाता है, बाद में क्या रहेगा, चार्ज होने का डिस्चार्ज होने में समय लगेगा, कैपेसिटी उसका लाइफ बैटरी का बढ़ जाता है, अभी छः दिन होगा तो बाद में एक महीना हो जाएगा, फिर बाद में छः महीना हो जाएगा उस तरह से। तो जैसे हम आगे और भक्तों का संग करते जाएंगे उतना हमारे अंदर उसको धारण करने की शक्ति बढ़ जाती है, तो ऐसे ही हमें करते रहना है। तो मैं एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें इफ यू आर इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज इवन इफ यू वॉन्ट टू फॉल डाउन यू विल नॉट फॉल डाउन, अगर भक्त संग में आपका मन बोले पतन करना है तो भी पतन नहीं होगा, इसलिए क्या कह रहे हैं भक्तों के संग में रहना सबसे ज्यादा एक्चुअली ये सीबीसी जो है आपका बीबीसी भक्ति वेदांत ब्रह्मचारी कोर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पहला साल होता है, पहले एक दो साल हमारे ब्रह्मचारी आश्रम के, ये बहुत ही हमारे नींव होता है भक्ति में, हम भी आए हैं, नए हैं, चीज़ों को सीखना चाहते हैं, इसलिए बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन किया है, दयालु गौरव ने बहुत मेहनत की है, सोचा है कि किस तरह से पूरी तरह से वो ज्ञान देना चाहिए, जिससे कि हम अलग अलग पहलू, आपको क्या लगता है ये चर्चा महत्वपूर्ण है या नहीं है हमारे लिए? बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जाने अनजाने में हम कभी कभी अपराध भी कर बैठेंगे, भक्तों के साथ अपराध हो जाएगा, बाहर वाले साथ तकलीफ हो जाएगी, उनको तकलीफ होगी, उनको तकलीफ होगी, इसका उनको तकलीफ है ना, तो ये चीज़ें हम अगर, क्योंकि इस्कॉन का साधु यानी इस्कॉन एक संस्था है, यानी सिर्फ जो जप करता है, तिलक लगाता है, कंठी माला पहना है, या कुछ होते हैं प्रचार करते हैं, कुछ होते सेवा करते हैं, उतना ही नहीं है, उसका व्यवहार कैसा है, समाज क्या देखता है, व्यवहार देखता है, उसके बाद वो सुनेंगे। एक कहावत आती है, एक प्रीचर थे फ्रांसिस नाम से, क्रिश्चियन बड़े प्रचारक थे, तो वो कह रहे थे वी शुड ऑलवेज प्रीच एंड इफ नेसेसरी समटाइम वी कैन स्पीक, मतलब क्या बोल रहे वी शुड ऑलवेज प्रीच बट इफ नेसेसरी समटाइम वी कैन स्पीक, यानी हमें हर बार अपने आचार से पकड़ना चाहिए, कभी भी बोलना चाहिए, आचार ज्यादा महत्वपूर्ण ऐसा, तो इसलिए ये जो अलग अलग एस्पेक्ट हमको आप सबके क्लासेज में होंगे हमारे आश्रम जीवन की नींव के लिए बहुत अच्छा है, अगर हम उसको ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे, उसके बारे में अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, तो देखेंगे हमारी भक्ति बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ेगी, और इसी जो में अगर हम थोड़ा सा ये करते हैं ऊपर नीचे तो फिर बाद में आगे तकलीफ होता है, तो फाउंडेशन है देखा जाए हमारा ब्रह्मचारी जीवन के जो ज्ञान है उसको हम खुद अपने जीवन में देते हैं, उसको अपनाते अपनाते आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्ण। Thank you.